मौज़ी नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ज़ावे निगाह के साथ सारी रिज़वी हाज़िर ख़िदमत है। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का प्रोग्राम भी आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम अपने इस प्रोग्राम में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अहम इलाक़ाई, आलमी और इस्लामी दुनिया से मुतालिक़ वाक़ियात का जायज़ा लेते हैं और इस सिलसिले में हमें मावनत हासिल रहती है सियासी उमूर के माहरीन की भी। और आज भी हमारे स्टूडियो में भी हमारे मेहमान मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही एक इंटरव्यू भी पेश किया जाएगा। और इस्लामाबाद से भी आज हमारा साथ देंगे सियासी उमूर के एक माहिर जनाब अज़हर आबदी साहब। तो इससे कबल के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस सिलसिले में बताते चलें कि पहले हमारे आज के मौजूआत पर भी एक सरसरी नज़र हम डाल रहे हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम में शामिल मौजूआत पर एक नज़र डाली गई और इससे आप यकीनन वाकिफ़ हुए। जैसा कि आपके इल्म में है कि मिस्र में काफ़ी अरसे से सियासी मैदान में तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं और मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता पलटे जाने के बाद से इख्वानुल मुस्लिमीन पर रोज़ाना ही हमले हो रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है तादीबी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इंतखाबात की तैयारियाँ एक तरफ हो रही हैं और दूसरी तरफ इख्वानुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी का ऑपरेशन जारी है और इख्वानुल मुस्लिमीन के सरकर्दा लीडरों, रहनुमाओं और आम कारकुनों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। आइए सिलसिले में हमारे तज़ीए निगार ने जो इस सूरत हाल का जायज़ा लिया है, मुलाहिज़ा कीजिए।
मिस्र में जहां एक तरफ उबूरी हुकूमत और इख्तदार के ऐवानों में मौजूद फौज सदारती इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है, वहीं दूसरी तरफ फौजी बगावत के मुखालिफिन ने अपना एहतजाज भी तेज कर दिया है। खासतौर पर गुज़श्ता जुमे को मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहरे हुए। इख्वानुल मुस्लिमीन ने जिस पर उबूरी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी है, काहिरा, इस्कंदरिया, अलजीज़ा, अलबहरिया, अलमनिया और असियूत में वसी पैमाने पर मुजाहरे किए, जिसके दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहरीन पर हमले किए। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और बहुत से मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि 61 सियासी कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले भी इख्वानुल मुस्लिमीन के दर्जनों कारकुन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं, उनके मुताबिक गुज़श्ता साल मौसम गर्मा से लेकर अब तक मिस्र में 1400 अफराद हलाक और हजारों अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ होने वाली फौजी बगावत से सबसे ज्यादा नुकसान इख्वानुल मुस्लिमीन को पहुंचा है। माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी समेत तंजीम के अहम रहनुमा सलाखों के पीछे हैं और उबूरी हुकूमत मुल्क के हालात पर काबू पाने के लिए आए दिन सख्त से सख्त कानून वजा कर रही है। मिस्र की उबूरी काबीना ने हाल ही में एक करारदाद मंजूर करके दहशत गर्दाना कार्रवाइयों पर दी जाने वाली सजा को और सख्त करने का ऐलान किया है और इसी सिलसिले में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए काम करने वाले सिक्योरिटी इदारों और अदालतों की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। इससे पहले यह कानून नाफिज किया जा चुका है कि कोई भी मुजाहरा पुलिस की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। हुकूमत ने कहा है कि जो भी इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसे कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा। इख्वानुल मुस्लिमीन समेत मुतअद्दिद तंजीमों ने इस कानून की सख्ती से मुखालफत की है और इसे ज़ालिमाना करार दिया है। अब तक बहुत से कारकुनों को इसी कानून की खिलाफ वर्जी पर 2 साल की जेल और नकदी जुर्माने की सजाएं दी जा चुकी हैं। इस वक्त मिस्र में मुजाहरीन का मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और शहरी आज़ादी को बहाल किया जाए। इख्वानुल मुस्लिमीन ने फौजियों के इख्तदार से बेदखली का मुतालबा उठाकर इलेक्शन के बायकॉट का ऐलान किया है। मिस्र में आइंदा 26-27 मई को सदारती इलेक्शन होने वाले हैं। मुल्क के बहुत से सियासी हलके इलेक्शन को शकूक व शुबहात की नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि फौज इस इलेक्शन की आड़ लेकर इख्तदार पर दोबारा पूरी तरह काबिज हो जाना चाहती है। इस ख्याल को इस बात से तकवीत मिलती है कि वजीर दिफा और फौज के सरबराह अब्दुल फत्ताह सीसी ने, जिन्होंने मोहम्मद मुर्सी की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ बगावत की, सदारती इलेक्शन के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर खुद को पेश किया है और उबूरी हुकूमत उनकी हिमायत कर रही है।
नाज़रीन, मिस्र की ताज़ा सूरत हाल और मुतनाज़े इंतखाबात के हवाले से आपने तफसीली तज़िया मुलाहिज़ा फरमाया और अब रुख करते हैं फ़लस्तीन का। इत्तला हैं कि गज़ा पर ताज़ा सियोनी जारियत में सिर्फ 7 फौजी हमलों में 18 रॉकेट जो हैं वो 20 मिनट में दागे गए हैं। अलबत्ता इस वाक़े में कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, ताहम हमारे तज़िया निगार ने इन हमलों के पीछे जो सियोनी हुकूमत का मकसद कार फरमा है उसका कुछ यूं जायज़ा लिया है।
गजा पट्टी पर सहयोनी हुकूमत के फजाई हमलों से बरसों से महसूर ये इलाका एक बार फिर लरज कर रह गया है। इसराइल के जंगी तैयारों ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बड़ा शदीद हमला किया और एक हमले में 20 मिनट के दौरान 18 मिसाइल फायर किए गए। इन हमलों में 10 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के जख्मी होने की खबरें हैं, जबकि घरों, खेतों और दुकानों को भी शदीद नुकसान पहुँचा है। इसराइल के इन हमलों के जवाब में गजा की मुंतखब हुकूमत ने कहा है कि सहयोनी हुकूमत हालात को बहरानी बनाकर दर हकीकत उस सियासी बहरान से नजात पाना चाहती है जिसमें वो इस वक्त गिरफ्तार है। मुंतखब हुकूमत के वजीर आजम इस्माइल हनिया के वजीर इत्तलात व नशरियात ताहिर अन्नोनो ने गजा पर इसराइल के जुमे के दिन के हमले के बाद इसराइल को हर तरह की मुहिम जोई की तरफ से खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल अपने दाखिली बहरान को दीगर इलाकों में मुंतकिल करने के मकसद से गजा में हालात खराब करने के दर पे है। गजा पट्टी का इलाका जून 2007 से इसराइली फौज के मुहासरे में है, जिसकी वजह से इलाके में शदीद मईशती मुश्किलात पैदा हो गई हैं और लोग गजाई अशिया और दवाओं की शदीद किल्लत से दोचार हैं। बड़ी तादाद में लोग बेघर और बेरोजगार हो गए हैं। गजा पट्टी के इलाके में आबाद 17 लाख की आबादी को इसराइल ने इब्तदाई जरूरत की अशिया से भी महरूम कर रखा है। इलाके में बड़ी तादाद में अस्पताल और स्कूल बंद हैं। 363 मुरब्बा किलोमीटर रकबे वाले गजा पट्टी के इलाके में घनी आबादी है। यहाँ बेघर अफराद की तादाद 10 लाख तक बताई जाती है, जो पनाह गुजी कैंपों में रहते हैं और इसराइल के फजाई हमलों से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचता है। इसराइल ने इस वक्त गजा पट्टी के खिलाफ नई मुहिम जोई किस वजह से की है, ये एक अहम सवाल है। फिलिस्तीनी इंतजामिया और इसराइल के माबैन होने वाले नाम नहाद अमन मुजाकिरात की नाकामी के बाद दोनों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है और फिलिस्तीनी इंतजामिया ने बैनुल अक्वामी इदारों में फिलिस्तीन की रुकनियत की इब्तदाई कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिस पर गासिब सहयोनी हुकूमत को शदीद तशवीश लाहक हो गई है और उसने गजा में बहरान पैदा करके हालात का रुख बदलने की कोशिश की है। सहयोनी हुकाम को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने गजा में बहरान में शिद्दत पैदा कर दी तो आलमी राय आम्मा की तवज्जो इस मसले की तरफ मरकूज हो जाएगी और फिलिस्तीनी इंतजामिया पर मुजाकिरात की मेज पर वापसी के लिए दबाव बढ़ेगा। गजा पट्टी के खिलाफ जारहियत, गर्ब उर्दुन के इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर और मशरकी बैतुल मुकद्दस में मशकूक इकदामात के बाद इसराइल के अजायम में किसी को कोई शक व शुभा नहीं होना चाहिए कि वो वक्त ज़ाया करने की पॉलिसी पर गामजन है और आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत की तश्कील को जहां तक मुमकिन हो सके मुलतवी करवाना और इस दौरान ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनी इलाकों को अपने कब्जे में लेना चाहता है।
नाज़रीन, पिछले दिनों हिंदुस्तानी मीडिया पर कोबरा पोस्ट के हवाले से ये खबर मंजर आम पर आई कि 6 दिसंबर 1992 को तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने का जो मामला था उससे उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव और एल के एडवानी अच्छी तरह वाकिफ थे। कोबरा पोस्ट में ये भी कहा गया है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के सिलसिले में बाज़ लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेनिंग भी दी गई, उनकी तरबियत की गई और इस काम पर उकसाया गया। इस सिलसिले में जो तजिया सामने आ रहा है वो ये है कि इंतखाबात के नज़दीक इस मसले को ख़ास अहदाफ के तहत उठाया जा रहा है। आइए हिंदुस्तान के मारूफ तजियाकार प्रोफेसर कमर आगा से उनकी राय इस बारे में जानते हैं।
देखिए, बहुत से लोगों का ये मानना है कि नरसिम्हा राव को जो कदम उठाने चाहिए थे उस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो नहीं उठा पाई और वहां पे बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और जो कि पहले से तैयारी करके आई थी और उसने मस्जिद को गिराया, तो गवर्नमेंट उस वक्त की जो थी उसके ऊपर ये इल्जाम है कि वो वहां पे रोक नहीं पाए। नरसिम्हा राव का कहना यह है क्योंकि गवर्नमेंट स्टेट की थी और लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो स्टेट के अंदर में होता है और चीफ मिनिस्टर ने वहां पे हमने यहाँ उनका कहना यह कि उन्हीं ने यहाँ से फोर्सेस भेजे थे, स्पेशल पैरामिलिट्री और सब किस्म के डिप्लॉयमेंट किया था और भी सामान भेजा था, मगर वहां पे बीजेपी की जो हुकूमत थी कल्याण सिंह की, उसने सही तरीके से हैंडल सिचुएशन को नहीं किया। बहुत से लोगों का मानना है कि इसमें मिली भगत भी थी दोनों की। देखिए, बाबरी मस्जिद का मसला कोई बहुत बड़ा इशू इस इलेक्शन में है नहीं, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। और ठीक है, नए इतने इशू आ गए हैं उसी में उलझ गए हैं, और बाबरी मस्जिद को इतना इम्पोर्टेंट इशू या डिस्कशन या डिबेट या अखबार में अब आजकल हटा हुआ है, दूसरे इश्यूज उनके सामने ज्यादा है। तो इस और ना ही बीजेपी ने इस बात को अपना इशू बनाया, हालांकि इस बात के ऊपर उसका काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है।
नाज़रीन, अमेरिका ने चीन को इंतबाह दिया है कि वो क्रीमिया के मसले में दूर रहे और रूस की पॉलिसियों को फॉलो ना करे। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर चीन ने इस सिलसिले में मज़ीद इकदामात किए और उसने ज़्यादा इस मसले में उलझने की कोशिश की तो उसके खिलाफ़ भी माशी और तादीबी इकदामात किए जा सकते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए हमारा ये तबसरा।
अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा डैनियल रसल ने चीन को खबरदार किया है कि जजीरा नुमाए क्रीमिया के मामले में रूस की पॉलिसियों जैसी कार्रवाई करने से बाज रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका एशिया में मुख्तलिफ इलाकों पर चीन के मालिकाना दावों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकता है। उन्होंने चीन के खिलाफ इकतसादी पाबंदियां आयद करने के इम्कान की भी तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत चाहती है कि चीन पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ाए। उन्होंने कहा कि चीन को रूस के सिलसिले में अमेरिका की पॉलिसियों की माहियत से आगाह रहना चाहिए ताकि वो खुद भी मुश्किलात से दोचार ना हो। इस बात में कोई शुबा नहीं कि अमेरिका को चीन की तरफ से भी रूस जैसे इकदामात का अंदेशा है, लेकिन इस नुक्ते की तरफ इशारा करना जरूरी है कि सन 1954 में क्रीमिया का इलाका निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन को दिया था। चूंकि ख्रुश्चेव खुद भी यूक्रेन से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा इस इलाके का यूक्रेन में इलहाक बगैर किसी मुश्किल के अंजाम पा गया था। जबकि रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन ने जमहूरी तरीके से और क्रीमिया में होने वाले इस्तेसवाब राय की बुनियाद पर इस इलाके को रूस में जम करने की कार्रवाई अंजाम दी, जिस पर पूरी दुनिया ने मुखालफत नहीं की, लेकिन अमरीका और यूरोप को उसके इस इकदाम पर बड़ी तशवीश लाहक हो गई। अमरीका ने चीन को जो ये इंतबाह दिया है कि रूस जैसी कार्रवाई करने से गुरेज करे, तो इसमें किसी ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अगर चीन को अपने कौमी मफादात के तहत ज़रूरत महसूस हुई तो वो ताइवान के चीन में इल्हाक की कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि ऐसी सूरत में अमेरिका को चीन का मुकाबला करना होगा और नतीजतन उसके सामने चीन और रूस की सूरत में दो बड़ी ताकतें होंगी। ये भी एक हकीकत है कि मॉस्को और बीजिंग के दरमियान करीबी दिफाई ताउन शंघाई ताउन काउंसिल में दोनों की मौसर मौजूदगी और अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल में दोनों की मजबूत पोजीशन की वजह से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका के सिलसिले में दोनों मुल्कों का मौकिफ क्या होगा। उधर इस इतिहास से अमेरिका को तशवीश लाहक है, चुनांचे अमरीकी सदर ने चीन अमरीका सिफारती ताल्लुकात को 35 साल मुकम्मल होने पर चीन के सदर को एक खत तहरीर करके मुस्तहकम बाहमी ताल्लुकात की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इसी खत में कहा कि दोनों ममालिक मिलकर एक दूसरे के अहम मफादात की तकमील में मदद कर सकते हैं, बिनाबारी मुश्तरका चैलेंजों से निमटने के लिए दोनों को एक साथ काम करने की ज़रूरत है। चीन हमेशा टकराव और तसादुम से दूर रहने की पॉलिसी पर गामजन रहा है और उसने हमेशा आलमी मामलात में ये रवैया रखा है कि हर फरीक फ़ायदे में रहे, लेकिन इसके बावजूद चीन की क़यादत को खूब अंदाज़ा है कि सरमायादाराना निज़ाम से निमटने का क्या तरीका है, और इसी बिना पर वो अमेरिका के सिलसिले में अपनी पॉलिसियां वज़ा करती है। बहरहाल, तसादुम की सूरत पैदा हुई तो चीन के पास भी अमेरिका के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के बहुत से मौके और वसाइल होंगे, और अमेरिका को भी इसका खूब अंदाज़ा है।
ناظرین، تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا چین اور امریکہ تعلقات کے تناظر میں، اور اب ہمارے پروگرام کا آخری موضوع، جی ہاں، میانمار کی صورتحال پر ہماری گفتگو رہے گی، اور اس سلسلے میں آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن نقوی صاحب، اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دیں گے جناب اظہر آبدی۔ تو ہم ان دونوں حضرات کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور گلشن نقوی صاحب سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ گلشن نقوی صاحب، میانمار کے حوالے سے ہر تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد گاہے بگاہے مختلف قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں اور عالم اسلام کے لیے یہ نہایت ہی افسوسناک خبریں ہوتی ہیں اسلامی دنیا کے تعلق سے کہ ایک بہت بڑی آبادی، بہت بڑی تعداد وہاں پر آباد ہے اور صدیوں سے آباد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ابتدائی ترین حقوق سے بھی محروم ہے۔ اس سے قبل کہ میں گفتگو کا باضابطہ آپ سے آغاز کروں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ صورتحال کیا ہے وہاں پہ مسلمانوں کی؟
جی، موجودہ صورتحال جو اس وقت میانمار میں ہے مسلمانوں کی، وہ وہی ہے جو تب سے قائم ہے، یعنی 1962 سے، کہ جب سے اس ملک پر فوجی حکومت قائم ہوئی ہے، تو ان کی صورتحال میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ اب جو ہے وہ زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے اس وقت، چونکہ جب سے 2 سال پہلے سے بودھائیوں نے یا بدھسٹوں نے مسلمانوں پر حملے کیے، تو اس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان، یعنی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے پناہ گزینی پر اور نقل مکانی پر اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، چونکہ ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ہزاروں گھروں کو آگ لگائی گئی اور بہت سارے افراد کو وہاں پر، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، مارا گیا ان کو، اور جو بھی ان پر تشدد وہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ انسان کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ان کی مسلمان خواتین کے ساتھ آبرو ریزی ان کی کی گئی، خواتین کی۔ تو اس ساری صورتحال کے نتیجے میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب وہاں کے جو مسلمان ہیں روہنگیا، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا اور پناہ گزین کیمپوں میں ان کو زندگی گزارنی پڑی۔ ان پناہ گزین کیمپوں میں بعض کیمپ ایسے ہیں کہ جو خود میانمار کے اندر ہیں، اور بعض جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں ہیں، جیسے بنگلہ دیش ہے، تھائی لینڈ ہے یا ملائیشیا وغیرہ، اس طرح کے جو ممالک ہیں۔ تو اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں ان کی صورتحال بہت زیادہ ابتر ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ دوبارہ، یعنی میانمار کی حکومت ایسے اقدامات کرے کہ وہ واپس دوبارہ اپنے گھروں میں آ سکیں۔ اب خراب صورتحال کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بیچارے مسلمان جو ہیں نہ تو کیمپوں میں رہ سکتے ہیں، چونکہ وہاں پر نہ ادویات ہیں، نہ کھانے کے لیے ان کے پاس ہے، حتیٰ پانی پینے کے لیے بھی ان کے پاس جو ہے وہ مشکل سے پہنچتا ہے، مشکلات کا سامنا ہے ان کو، اور نہ ہی وہ پلٹ کے اپنے گھروں میں آ سکتے ہیں، چونکہ وہاں پر بدھسٹوں کے حملوں کا دوبارہ جو ہے ان کو خطرہ ہے۔ تو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی گزار رہے ہیں جو کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ تو وہاں پر میانمار میں بدھسٹوں نے خود اقوام متحدہ کے جو کارکن ہیں اور ان کے جو دفاتر ہیں وہاں پر، جو ان مسلمانوں کو امدادی سامان پہنچاتے ہیں، ان کیمپوں، ان دفاتر کو، اقوام متحدہ کے دفاتر کو اور جو امدادی کارکن ہیں ان پر کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بنایا۔ تو اب خود اقوام متحدہ وہاں سے اور امدادی ٹیمیں وہاں سے جا رہی ہیں، اور امدادی سامان پہنچانے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ختم یا بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میانمار کے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر جو پناہ گزین ہیں ان کے لیے واقعی ایک انسانی المیہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔
جی،
تو بہت ہی وہاں کی صورتحال۔
جی گلشن نقوی صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا اس طرف کہ قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور عالم اسلام بھی جو ہے وہ خاموش ہے، اور متعلقہ ادارے کہ جو انسانی حقوق اور انسانی حقوق سے متعلق تنظیمیں ہیں، جو جن کے بڑے بڑے فنڈز ہیں اور جو اسی بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں کہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا اقدام ہوتا ہے، نسلی تصویر کی کہیں بات ہو، مذہبی تصویر کی بات ہو، تو وہ میدان عمل میں آئے۔ لیکن دو رخی پالیسی ہم ان کی دیکھتے ہیں، دو رخی اقدامات ان کے دیکھتے ہیں، دوغلاپن جو ہے وہ ان عالم اداروں کے کردار میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ مثلا یہ میانمار کا مسئلہ کہ صدیوں سے جو ہے وہ میانمار کے مسلمان جو ہیں وہ صرف اپنی شناخت جو ہے وہ منوانے میں ناکام رہے ہیں کہ اگر بین الاقوامی قوانین اور ضوابط کے تحت خود اقوام متحدہ کے قوانین جو ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے کہ 5 سال سے زیادہ اقامت رکھنے کے بعد، 5 سال سے زیادہ مقیم رہنے کے بعد جو ہے وہ ملک اگر چاہے، اور وہ مہاجر یا غیر ملکی تارکین وطن میں سے کوئی نیشنلٹی کی درخواست دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، وہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے، اور حکومتیں بھی اس بات پر مجبور ہیں کہ وہ ان کو قبول کریں،
شہری بنائیں۔
یہاں پر صدیاں گزرنے کے بعد بھی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ بیرون ملک سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اتنا کھلا تضاد جو ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ سکوت جو اختیار کیا گیا ہے اس کے پیچھے ان کے کیا عزائم ہیں، کیوں ऐसा नज़र आ रहा है?
जी बिल्कुल, यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं। एक तो वहाँ की हुकूमत जो है उसका किरदार हमें देखना पड़ेगा, म्यांमार की हुकूमत का, और दूसरा जो यूरोपी ये इदारे हैं या आप समझे कि जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले हैं या जो बड़ी ताकतें हैं उनकी खामोशी जो है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन इन दोनों बातों की वजाहत से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो मसलन बांग्लादेश से वहाँ पर आए हैं, वहाँ के नहीं हैं, तो इसी तरह ख़ुद वो जो म्यांमार के जो असली लोग हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये नवीं सदी में ये चीन के इलाके तिब्बत से वहाँ पर पहुँचे थे। तो हम ये सब कहते हैं कि अगर इस तरह की बात है तो दोनों के साथ एक जैसा सलूक होना चाहिए। अगर आपने म्यांमार के जो बुद्धिस्ट हैं उनको कबूल कर लिया, हालांकि वो भी तिब्बत से हिजरत करके वहाँ पर आए हैं, तो फिर मुसलमानों के बारे में तो अगरचे यकीन नहीं है, लेकिन अगर इस फ़र्ज़ को तस्लीम भी कर लिया जाए कि ये बांग्लादेश से इनका ताल्लुक़ है, तो जिस तरह वो दूसरे तिब्बत से आने वाले वहाँ के शहरी हो सकते हैं, तो फिर ये रोहिंग्या मुसलमान जो सदियों से वहाँ पर आबाद हैं और वहाँ पर उनकी ज़मीनें हैं, हर चीज़ उनकी वहीं पर है, तो वो वहाँ के शहरी क्यों नहीं बन सकते हैं?
जी गुलशन साहब, आपकी गुफ्तगू के हवाले से मैं एक और सवाल मेरे जहन में आया कि ये जो सूरत हाल है कि उनको शहरी तस्लीम नहीं किया जाता और तिब्बत से आने वाले गैर मुल्की तारिकीन वतन जो आमतौर पर बुद्धिस्ट हैं उनको वहाँ का शहरी मान लिया गया और उन्हीं के ज़रिए जो है मुसलमानों का कत्लेआम कराया जा रहा है, उन्हीं के ज़रिए जो है उनके घरों को लूटा जा रहा है, मसाजिद को आग लगाई जा रही है और उनको महाजरत पर मजबूर किया जा रहा है। और ये ऐसी हालत में है कि जो खबरें अफसोसनाक हमें मिली हैं वो ये हैं कि कितने ही लोग जो हैं समंदर के रास्ते जब उन्होंने दूसरे मुल्कों में नकल मकानी की कोशिश की तो समंदर में गर्क हो गए, उनकी कश्तियां डूब गईं, कितने ही लोग जो हैं जो बॉर्डर पे पहुंचे उनको बांग्लादेश से वापस कर दिया गया, कितने लोगों को दूसरे मुल्कों की सरहदों से वापस किया गया, या जिन लोगों को पनाह दी गई वो कैंपों में नहायत ही कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आलम इस्लाम भी हमें यहाँ कहीं नज़र नहीं आता। इस्लामी मुल्कों की जो तंजीमें हैं, इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम मसलन या अरब लीग जो ख़ुद मुसलमानों की सबसे बड़ी मालदार तरीन मौसर तरीन तंजीम है, वो कहाँ है?
जी आपने ठीक इशारा किया कि इस्लामी तावन तंजीम जो है वो हमें तो उसकी जब से वो बनी है तब से कोई ऐसा अमली इकदाम जो उसने मुसलमानों की हिमायत के लिए किया हो वो नज़र नहीं आता है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मुसलमान हुक्मरान जो हैं उनमें अभी तक इस्लामी बेदारी की लहर जो है वो नहीं आई है, अगरचे अवाम में जो है वो इस्लामी बेदारी जो है वो फैली है और आप देखें तो सारी दुनिया के मुसलमान जो हैं उनकी हमदर्दियाँ रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन वो चीज़ वो जज्बा जो अवाम के अंदर पाया जाता है, मुसलमान मिल्लत और मुसलमान कौम के अंदर पाया जाता है, वो हमें मुसलमान हुक्मरानों के अंदर नज़र नहीं आता। और ये जो तंजीमें हैं जिनका आपने ज़िक्र किया ये चूँकि उन्हीं के हुक्मरानों के ज़ेरे असर हैं और वो हुक्मरान जो हैं वही इसके इसको चलाने वाले हैं, इसको मकासद इसके मुय्यन करने वाले हैं और इसकी फंडिंग जो है वो करने वाले ज़्यादातर वही हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इनकी तरफ से भी कोई इकदाम जो है वो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए नहीं किया जा रहा है, चूँकि मुसलमान हुक्मरान जो हैं आम तौर पर दुनिया में चंद एक मुल्क को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए सारा काम कर रहे हैं, अपने मफादात के लिए काम करते हैं, हत्ता कि हम देखते हैं कि अगर उनको अपने मफाद ख़ुद मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में नज़र आते हैं तो ऐसे हुक्मरान जो हैं वो फिर मुसलमानों के फ़ायदे की बात नहीं करते हैं बल्कि अपने मफाद की बात करते हैं। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे कि खुद इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से अगर हम देखें सऊदी अरब के किरदार को तो मेरे ख्याल में मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी।
जी बहुत शुक्रिया गुलशन साहब। इस वक्त अज़हर आब्दी साहब जो हैं वो लाइन पर हैं। अज़हर आब्दी साहब सलाम अलैकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी अज़हर आब्दी साहब, हमारी गुफ्तगू म्यांमार के हवाले से हो रही है, गुलशन नकवी साहब से हमारे गुफ्तगू जारी है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि म्यांमार में जो थोड़े थोड़े अरसे के बाद मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के हवाले से ख़बरें हमें मिलती रहती हैं उस पर आलम इदारे भी खामोश हैं और आलम इस्लाम भी हमें कहीं कोई किरदार दिखाता नज़र नहीं आता, आपकी क्या नज़र है इस पर, क्या राय रखते हैं आप इस बारे में?
देखें ये तो एक अज़ल से ये फैसला है कि जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा है मर्ग मफाजात, कि जो कौमें कमज़ोर होती हैं या जहनी तौर पर वो गुलाम बना दी जाती हैं, उनके साथ फिर तारीख में यही होता है। वो कौमें के जो बागैरत होती हैं, वो कौमें के जो सर उठा के चलना जानती हैं, वही कौमें जो हैं वो तारीख में भी सुरखरू रहती हैं और वही कौमें अपने हकूक का दिफा कर सकती हैं। अभी आप देख लीजिए कि ये म्यांमार में या साहब का नाम जिसका बर्मा था, उसमें ये 5% के करीब मुसलमानों की आबादी है और 6 करोड़ का मुल्क है, उसमें 5% कोई कम आबादी नहीं होती। और बार बार इन पर जुल्म ढाए जाते हैं, इन पे अटैक्स होते हैं, वायलेंस होते हैं, और ये दोनों तरफ से हो रहे हैं, यानी सोसाइटी के वो तबके जो इंतहा पसंद हैं वो भी मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी मुसलमानों पर जो जिंदगी है वो तंग कर दी गई है। यहाँ तक कि इस दफा जो पिछला सेंसिस हुआ, जो जिक्र भी हो चुका, उसमें भी उनकी शनाख्त को जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में कभी कभी अक़वाम मुत्तहिदा जागती है और वो कुछ ऐसा बयानबाजी की हद तक, बयान देने की हद तक कुछ कहती है, लेकिन बाकी ना तो कोई दीगर अक़वाम और ना मुसलमान के जिन्होंने इतनी बड़ी ये तंजीम OIC के नाम से बनाई हुई है, ये कुछ करती है इस मामले में। तो इसका तो हल यही है कि मुसलमान मिल्लतें खुद खड़ी, मुझे जो नज़र आ रहा है, आपने जो मुझसे पूछा है और सवाल का जो मुझे अंदाज नज़र आ रहा है वो यही है कि हल क्या है, तो मुझे इसके अलावा कोई हल नज़र नहीं आता कि तमाम मुसलमान ममालिक में उनकी उमंगों के मुताबिक हुकूमतें कायम हों। इस वक्त चंद एक मुसलमान मुल्क हैं कि जिसमें अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत कायम है और वो फिर खड़े भी होते हैं, ईरान की मिसाल हमारे सामने है, काफ़ी हद तक पाकिस्तान की जानिब से भी ऐसा किया जाता है कि शदीद मजम्मत की जाती है। अगर तमाम मुसलमान मिलकर OIC मिलकर ना सिर्फ करारदादे मजम्मत पास करे यानी कॉन्फ्रेंस करे, वो तो ज़रूर करे, लेकिन इसके अलावा अमली तौर पर पाबंदियां लगाए बर्मा पे, तो मैं नहीं समझता कि अगर मुसलमान अकवाम मिलकर बर्मा पर अमली तौर पर पाबंदियां लगाएंगी तो ये जो बाकी दीगर ऑर्गेनाइजेशन है, EU है, UN है, वो दुनिया के इतना बड़ा जो एक सेगमेंट है, ये जो इतने सारे मुसलमान मालिक हैं, इनसे अलग होकर रह सकें। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि मुसलमान मिल्लतों को उठना चाहिए, अमंगों के मुताबिक हुकूमतें कायम होनी चाहिए, खाब मिडल ईस्ट हो, हमारी मिडल ईस्ट कितनी बड़ी ताकत है इस वक्त इस्लाम की, लेकिन हर मिडल ईस्ट के हर मुल्क में आप देख लें इस वक्त आमिर हुकूमतें कायम हैं, हर मुल्क में इनके खिलाफ तहरीक चल रही है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं, खुदावंदे कुद्दूस से उम्मीद है कि ये कामयाब होंगी, ये मिलकर म्यांमार पर पाबंदी लगाएं और उसका असर फिर यकीनन फैलेगा और इस हुकूमत पर दबाव पड़ेगा कि वो मुसलमानों के हकूक का तहफ्फुज़ कर सके।
जी जनाब अजहर आब्दी साहब, एक सवाल मुख्तसर सा मैं आपकी गुफ्तगू की रोशनी में करना चाहूँगा कि बहरहाल सूरत हाल जो है वो ये है कि वहाँ पर रोज़ाना कत्ल व गारतगरी हो रहा है, लूटमार हो रही है, हुकूमत भी कर रही है और वहाँ के बुद्धिस्ट जो हैं इंतहा पसंद, उनकी तरफ से भी जो है मुसलमानों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। आपने कहा कि मुसलमान ममालिक की जानिब से ऐसा कोई ठोस इकदाम किया जाए, बायकाट किया जाए, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ तो यकीनन नतीजा बरामद होगा, लेकिन हम देखते ही हैं कि मुसलमान हुकूमतें या मुसलमान ममालिक के जहाँ आमरियतें हैं और जहाँ आमरियतें नहीं भी हैं वो मगरबी ममालिक को और बड़ी ताकतों को देखते हैं। आपने देखा होगा कि जिस वक्त म्यांमार में कत्ल व गारतगरी उरूज पर था उस वक्त अमरीकी सदर बाराक ओबामा एक आला सती वफद के हमरा म्यांमार पहुँचते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो मुसलमान ममालिक के उन हुक्मरानों के लिए कि जो फॉलो करते हैं इन लोगों को और इनके पेश नज़र मंसूबों को सामने रखते ही पॉलिसियाँ तरतीब देते हैं, इम्कान है इस बात का कि वो उनके मिजाज के खिलाफ मामूली सा कदम उठा सकें?
आपने मिसाल दी कि बाराक ओबामा दौरा करते हैं तो ये अमेरिका ही तो है कि जो इन हुकूमतों की पुश्त पर है, ये हुकूमत, ये आमिर, ये डिक्टेटर, ये अवाम से कटे हुए ये लोग, ये अपनी ही अवाम पर जुल्म सितम करने वाले, ये अपनी ही अवाम के साथ नाइंसाफी से पेश आने वाले किस तरह अमेरिकन पॉलिसी से अलग हो सकते हैं? मेरा तो मुखातिब हैं ही मुसलमान अवाम, इन हुक्मरानों से तो हम मुखातिब हो ही नहीं सकते, ये हुक्मरान तो मुसल्लत ही इस चीज के लिए किए गए हैं कि ये जो ताऊत है, जो मगरबी रियासतें हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनके मफादात का तहफ्फुज अपने मुल्कों में कर सकें। तो अपने मुल्कों से बाहर का जो दायरा है उसके लिए तो हर वक्त हाथ बांधे खड़े होते हैं वेस्टर्न पावर्स के और अमेरिका के मुकाबले में। ये तो जब तक के वो जो इकबाल ने कहा था कि तेहरान होकर आलम मशरिक का जनेवा, शायद कुर्राए अर्ज की तकदीर बदल जाए। तो जब तक के तेहरान से उनकी मुराद यही थी कि अवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत होगी तो फिर तेहरान जो है वो मुसलमानों का जनेवा बनेगा। तो ये तो हम जैसे शहर टीवी, जैसे प्रेस टीवी, जैसे और ग्लोबल लेवल पे इस वक्त बहुत सारे मीडिया में चैनल्स हैं कि जो अवाम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवाम तक जब पैगाम पहुंचेगा, ये हुकूमतें तब्दील होंगी, तब ही वो सबसे पहले तो अपने अवाम का तहफ्फुज करेंगी, अपने अवाम तक इंसाफ पहुंचाएगी। बहरीन में आप देखें क्या हो रहा है
जी,
ये शाही खानदान बार बार शोर मचाया जाता है कि वहां पर 70% या 80%
अजहर आबदी साहब
जी 70-80% है, लेकिन वो तो अपने तहफ्फुज नहीं कर सकती
जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपको किसी मौके पर जो है वो मदु करेंगे हम। यहाँ अब तक की गुफ्तगू के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। गुलशन अख्तर साहब, वक्त महदूद है, एक मिनट का सिर्फ वक्त है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि म्यांमार में इस वक्त खबरों के मुताबिक मरदम शुमारी हो रही है, आया उस मरदम शुमारी में खुद म्यांमार के सितम रसीदा मुसलमानों को भी जो है वो शामिल किया जा रहा है?
जी, जहाँ म्यांमार के मुसलमानों पर दूसरे मजालिम उठाए जा रहे हैं,
वक्त का ख्याल रखिएगा एक मिनट
जी, तो वहाँ पर यह भी है कि उनको ये बुनियादी तरीन हक जो कि हर इंसान का हक है, इसे भी महरूम किया जा रहा है। हालांकि म्यांमार की हुकूमत ने इससे कबल अक़वामे मुत्तहिदा को ये वादा किया था उसके साथ, और ये यकीन दहानी कराई थी कि हम जब मरदम शुमारी करेंगे तो उसमें म्यांमार के मुसलमानों को भी शामिल करेंगे, लेकिन अब जब अमली तौर पर यह होने जा रहा है तो उसने अपने फौजी हुकूमत ने बज़ाहिर अगरचे फौजी नहीं है लेकिन दरून खाना हम म्यांमार की हुकूमत को फौजी हुकूमत ही समझते हैं, तो इस हुकूमत ने भी जो है अपने इसी वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए वो म्यांमार के मुसलमानों को इस मरदम शुमारी में शामिल नहीं कर रही है।
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू आपने म्यांमार के तनाज़ुर मुलाहिज़ा की। बहरहाल हमारी दुआएं ये हैं कि खुदा जल्द अजल्द मुसलमानों को, मुसलमान हुक्मरानों को अक्ल व शऊर अता करे ताकि इस किस्म के जो मसाइल हमें कमोबेश नज़र आते हैं इलाके में, खित्ते में, उससे महफूज रह सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।